ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਿਕਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣਨਾ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਕਤ ਦੀ ਖੇਡ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਐਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਲੀਨ ਮਨੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲ ਯੁੱਗ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ, ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਲ ਯੁੱਗ। ਇਸਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਅਰਥ ਇਤਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਯੁੱਗ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਲੇ ਹੀ ਕਲੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਕਲੇਸ਼। ਇਹ ਕਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਲ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਤੇ ਕਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਕਲੇਸ਼, ਔਰ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਮ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਸਲਪਨੀ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪੈਠੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਨੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਬੇ ਨੁਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਪਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਦਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਧੱਬੇ ਆ ਗਏ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਕਤ ਦੀ ਖੇਡ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੋਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਅੰਜਾਮ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੜਵੇ ਫਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਗਲਤ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੀਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੋਕੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਗਲਤ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਦਾਰ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਾਲ ਹੀ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝੂਠ ਅਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। पर झूठ धार्मिक दुनिया दे च भी। ऐसियां कहानियां धार्मिक ग्रंथां दे च मिलदियां ने और ऐसे किस्से धार्मिक लोग सुनांदे ने जिन्हां दा सच नाल सच्चाई नाल दूर दा वी वास्ता नहीं। आख्या जांदा है कि ढाई चुलियां दे च अगस्त मुनि सागर नूं पी गए, मल मूत्र दे राहीं कढ़िया समुंदर खारा हो गया, गिला परना मारिया गया चंद्रमा नूं, मारिया गौतम ने, चंद्रमा दागी हो गया, मच्छंदर नाग दा जन्म मच्छी तो होया, गौकड़ दा जन्म गऊ तो होया, ऋषि मांडव दा जन्म मेंढकी तो होया। गरज के इस तरह दियां कहानियां और इस तरह दियां बयानबाजियां आम बंदियां दे अंदर शक पैदा कर देंदियां ने। ठीक है, इन्हां कहानियां दे जो रहस्य है, जो रमज है, उस तक ना पहुंचन कारण करके अगर इन्हां दा उपरोक्त रूप ही ले लईए फिर ते ये सारियां गलत बयानियां जापदियां ने। राजनीतिक ते समाजिक जिंदगी ते करीबन करीबन खड़ी गलत बयानियां ते, पर जद ये गलत बयानियां धार्मिक दुनिया दे च भी आ जान, रोजमर्रा दियां करामातां दियां कहानियां, ऐ हो गया ओ हो गया, अनहोणियां गल्लां धर्म ते धार्मिक बंदियां नाल जोड़ देण नाल हुंदा की है, सियाणे बंदे दे अंदर धर्म बारे भी गिलानी पैदा हो जांदी है। तो साहिब कहिंदे मैं देखदा हर पासे सच दा ते काल ही वरते है, किसे पासे सच दिखाई नहीं देंदा। आखिर जीवन मनुख दा वंडिया होया है, जीवन कुछ मनुख दा बाजार दे च विवहार दे च बतीत होंदा है, कुछ समाज परिवार दे च बतीत होंदा है, कुछ इसका जीवन धार्मिक है ते कुछ इसका जीवन राजनीतिक है। ते जीवन दे हर पहलू दे च अगर झूठ ही झूठ होवे तां फिर बाबे दे वाक बिल्कुल पूरे सही उतरदे ने कि सच काल कूड वरते है। सच दा ते मानो काल ही पै गया, चारों पासे झूठ ही झूठ परसे होया है, झूठ ही झूठ व्यापक है। कल कालक बेताल, ते इस झूठ दी कालक नाल जो कलयुग दी खास कालक है, जीव बेताल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। सच सफाई है, झूठ दाग है। सच अमन है, सुख है, चैन है, झूठ बेचैनी है, दुख है, संताप है, बोझ है। जिस मनुख की जिंदगी जितनी ज्यादा झूठी होवेगी वो उतना ही बेताल हो जाएगा, उतना ही दुखी हो जाएगा, उतना ही बेचैन हो जाएगा, उतना ही परेशान हो जाएगा। और जिस मनुख दे कोल जितना ज्यादा सच है, जितना अधिक सच है, उदे कोल उतना ही सुकून होवेगा, उतनी शांति होवेगी। और सहजे सहजे ऐसा होंदा है कि लंबी बीमारी विच रहण वाला मरीज मर्ज नाल सहमत हो जांदा है, बीमारी नाल सहमत हो जांदा है, और बीमारी नूं उखड़े मत्थे कबूल कर लैंदा है कि इहने ते रहना ही है। झूठ विच जमया, झूठ विच जीवन बतीत कर रहा मनुख अपनी धारणा ही बना बैठा है कि सच बोलना, सच दे च जीवना ते सच सोचना अति कठिन है, अति कठिन है। तो झूठ नाल भाई वाली पा बैठा है, झूठ नाल अपना जो है संबंध जोड़ बैठा है। साहिब कहिंदे ने मैं देखना सच दा ते बिल्कुल काल ही पै गया है, चारों पासे झूठ ही झूठ वरत रहा है, उदा ही पसारा है। ते झूठ दी कालक करके जीव बेताल हो रहे ने, कालक पोती होई है बोलां दे, क्योंकि बोलां दे च झूठ है। कालक पोती होई है दृष्टि दे च, क्योंकि वेखना झूठ है, सुनना झूठ है, सोचना झूठ है। हर पासे धब्बे ही धब्बे, हर पासे कालक ही कालक। और ये मौजूदा दौर दी देन है, समय दा प्रभाव है, वक्त दी खेल है। बियो बीज पत ले गए अब क्यों उगवै दाल। साहिब कहिंदे ने कि बीज बीजण वाले अपनी पत लैके, पत दा परवाना लैके ਪਤ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਤ ਦਾ ਫਲ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੇ ਦਾਲ, ਹੁਣ ਦਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ? ਬੀਜ ਉਹੀ ਪੁੰਗਰਦਾ ਜੋ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤੇ ਦਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲੀਏ ਤੇ ਦਲੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਸੀਏ ਤੇ ਆਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਜ ਦਾ ਅਗਰ ਆਟਾ ਬੋਈਏ, ਦਾਲ ਬੋਈਏ, ਉਹ ਪੁੰਗਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਗਣ ਲਈ, ਬੀਜ ਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬੀਜ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ ਮਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਕਸਰ ਕਰੂਪ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਰੂਪ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹਾਨ ਗਹਿਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਰੂਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਝ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅਗਰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ ਮਨ। ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੀਜ ਦੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋੜੇ ਵੱਟੇ ਕੰਡੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਆਗਿਆ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਧਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਪਥਰੇਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੀਜ ਢੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਨਪ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜਣਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬੀਜ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਰੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਲੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਧਾਵਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਅਗਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਖੱਬੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇ, ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਸਹੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਖੱਬਾ ਕੰਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੁਣੇ, ਦਰਅਸਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੇਗਾ। सज्जी लत सज्जे पासे जावे ते खब्बी लत खब्बे पासे जावे, मनुख उत्थे ही ढेरी हो जाएगा, किसे थां ते भी पहुंच नहीं सकेगा। सज्जा हाथ कुछ बनावे खब्बा तोड़ देवे, खब्बा कुछ लिखे सज्जा मेट देवे, तो कुछ भी नहीं लिखिया जा सकेगा, कुछ भी बन नहीं सकेगा। दरअसल दो हत्थां नू काम एक देना है, दो पैरां नू मार्ग एक देना है, दो अखां नू दृष्टि एक देनी है, और दो पैरां नू मार्ग एक देना है। हू बहु इसे तरीके नाल दो जिहड़े मन ने इन्हां नू चिंतन एक देना है, सोचनी एक देनी है, काम एक लेना है, दृष्ट एक लेनी है, स्रोत एक लेनी है। मन दी दुबदा ना बनी रहे, मन दाल ना होवे, तन दे दो टुकड़े करिए तन दी मौत हो जाती है, पर मन ते जीवदा ही टुकड़िया दे च है, निके निके टुकड़िया च। आम लोग गीत भी कह देंदे ने, साडे मन दे टुकड़े ते हजारां ने, साडा दिल ते हजारां टुकड़िया विच बटिया होया है, और यह बहुत वड्डी सच्चाई वो बयान करते हैं। वाकई कोई टुकड़ा किथे पे है, कोई टुकड़ा किथे पे है। शरीर दे इतने टुकड़े कर दईए ते शरीर दी तत छिन मौत है, लेकिन मन ते टुकड़िया दे ही जीवदा है। शरीर दे इतने टुकड़े हो जान तो शरीर नू जिंदा रखना बड़ा औखा है, और इतने सारे टुकड़े जुड़ भी नहीं सकते, पर मन प्रति एक प्रभु दी दया है, बख्शिश है कि असी इन्हां टुकड़िया नू एक कर सकते हैं, समेट सकते हैं, इन्हां नू एक रूप दे सकते हैं। साहिब कहिंदे ने जे एक होए तां उगवे, बीज एक होवे तां फिर उगे पैदा होवे। तो पहले इस बीज नू एक करना है। भगत कबीर जी महाराज कहिंदे ने जां की दिल साबत नहीं तां को कहां खुदा है। जिदा दिल ही साबित नहीं उदे लई खुदा कित्थे, उदे लई परमात्मा कित्थे। परमात्मा ते उस लई है जिदा दिल साबित है, जिदा बीज साबित है। बीज ही साबित नहीं ते गल किवें बनेगी। शब्द अपनी थां ते महान है, हर गुरु मंत्र अपनी थां ते महान है, गुरु दा शब्द गुरु दा मंत्र, लेकिन ऐ मन ते बीज ठीक नहीं, ये दुफाड़ होया पे, ये टुकड़े टुकड़े होया पे। तो पहले इस मन नु साबित करना है, एक करना है, इसे नु कहंदे ने मन नु एकाग्र करना है, मन नु एक करना है। तन एक है, मन एक नहीं है। उधो मन भयो दस बीस, ये बोल बिल्कुल सही ने। हजारां टुकड़े होए पेने इस मन दे, इनु एक करना है। धर्म की यह जी साधना है जप तप दे, ये मन नू एक करना है। दरअसल जैसे मन एक होता है मन की मौत हो जाती है, मन मिटदा है। ऐसे मिटदा है जैसे कि धरती दे बीज मिटदा है, पर बीज का मिटना प्रफुल्लित होना है, मन का मिटना परम आनंद की प्राप्ति है, मन का मिटना परम रस की प्राप्ति है। मन मुए धात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हस पाए। तन जिंदा रहे ते संसार नाल संबंध जुड़दा है, मन मर जाए ते निरंकार नाल संबंध जुड़दा है। संसार नाल संबंध जुड़े रहन तन नू जिंदा रखना लाजमी है, निरंकार नाल संबंध जुड़े मन नू मारना बड़ा लाजमी है। तन नू मारना बड़ा आसान है, खुदकशी करनी बड़ी आसान है। थोड़ा जिहा मनुख जहर खा लवे, अग दे अपने आप नू जला लवे, किसी उच्ची इमारत तो अपने आप नू गिरा देवे, ते तन दी ते मौत हो जाती है, तन ते खत्म हो जाता है। लेकिन लंबी चौड़ी समाधियां लाण वाले जप तप करन वाले बड़े बड़े साधु पीर पैगंबर भी रोंदे हुए देखे गए ने कि मन मरिया नहीं, मन अपनी थां ते मौजूद है, और भयंकर रूप दे जो है मौजूद है। इंज कह लो दिन भर कम धंधा इस वास्ते करना है कि किसी तरीके नाल तन जिंदा रहे, पर जप तप इस वास्ते करना है कि किसी तरीके नाल मन मर जाए, इसकी मौत हो जाए। तो साहब कहने जे एक होए ता उगवे, जे बीज एक होवे ता फिर उगे। एक दूसरी होर शर्त भी, रुती हूं रुत होए। बीज दा एक होना ते बड़ा लाजमी है, पर बीजन दी रुत दा होना भी बड़ा लाजमी है, रुत भी चाहिए। धरती ठीक होवे, बीज वधिया होवे, पर मौसम ठीक ना होवे, मौसम अनुकूल ना होवे, ता भी बीज दा प्रफुल्लत होना बड़ा औखा है। तो रुती हूं रुत होए। साहिब कहंदे रुतुआं दे चों आखर रुत भी महान चाहिदी है, चंगी चाहिदी है, उत्तम चाहिदी है। हुण सवाल यह पैदा होंदा है कि मन नूं शब्द दी धरती विच बीजी है, रुत केड़ी है, केड़ा समा है। असी जो धरती विच बीज बोंदे हां, इन्हां ते निगाह मारीए, किधरे किसान एक फसल चुकदा है, किधरे दो फसलां, किधरे किधरे तीन फसलां, किधरे एक बीज साल विच एक दफा बोया जांदा है, ते किधरे किधरे दो दफा, और बहुत ही किधरे एक थां ते तीन दफा भी साल विच एक बीज बोया जांदा है। ये मन बीज है और शब्द धरती है, गुरु दा मंत्र धरती है। इस बीज नूं बीजना है, रुत साल विच किन्नी क दफा आउंदी है? नहीं, साल दी गल नहीं, इत्थे अठ पैरां विच दिन रात विच दो दफा बीजण दी रुत आउंदी है, और उही रुत है। और उस रुत दी संभाल करके कोई बीजे तां फिर बड़ी बरकत है। उस रुत नूं गुरबाणी ने अमृत वेला कहा है। उस रुत नूं साडे देश दे ऋषि मुनिया ने ब्रह्म मुहूर्त आख्या है। उस रुत नूं इस्लामी फकीरां ने अलल सुबह करके आख्या है। पोह फुट गई है, लेकिन अजे सूरज नहीं निकलिया, अजे रात दी तारीकी भी मौजूद है। ये दिन ते रात दा संगम हो रहा है, ये जो दिन ते रात दा मेल हो रहा है, यही है आत्मा ते परमात्मा दे मेल करन दा समा, यही है बीज ते धरती दे मेल करन दा समा। शाम नूं सूरज गरूब हो गया है, लेकिन चानना अजे बाकी है, लाली अजे बाकी है, एकदम हनेरा नहीं हो गया। लेकिन असी दिन भी नहीं कह सकते इसनूं, क्योंकि सूरज गरूब हो गया है, पर असी रात भी नहीं कह सकते इसनूं, क्योंकि अजे थोड़ा जिहा चानना मौजूद है। इस तरह दे समय नूं कहिंदे ने संध्या, जिथे दिन ते रात दी संधि हुंदी है। ये संधि अठ पैरां विच दो दफा हुंदी है। एक ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले जद पोह फुट पैंदी है, सूरज उदय नहीं होया, पर रात भी पूर्ण तौर ते खत्म नहीं हुई, दिन ते रात दा संगम हो रहा है, दिन ते रात दी संधि हो रही है, दिन ते रात दा मेल हो रहा है। बस उही समा है शब्द ते सुरत दा मेल करन दा, उही समा है मन रूपी बीज नूं शब्द रूपी धरती दे च देण दा। गुरु नानक ने इस वास्ते ही सिख नूं दो वक्त सत्संग करन लई कहा है, एक सवेरे एक शाम। सवेरे उस वक्त जद दिन दिन नहीं है, रात रात नहीं है, अमृत वेला है। शाम नूं उदों जब सूरज गरूब हो गया। इस वास्ते शरीर दा बकायदा नितनेम अलग है, शाम दियां बाणियां पाठ दियां बकायदा अलग ने, और उस समय नूं संभाल के कोई बीज बोवे शब्द दी धरती विच, तां सतगुरु दी बाणी दा फैसला है, हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। बड़ी बरकत पाएगी अगर उस समय कोई बीजे। समा मददगार होंदा है, परमात्मा मददगार होंदा है, वो रुत अनुकूल आउंदी है। वो नादान है किसान जो मौसम से सिर वक्त सिर बीज नहीं बोंदा, ते बेरुत्ता बीज बोंदा है, ते बेरुत्ता बीज बोया होया समय सिर प्रफुल्लित नहीं होता, पूर्ण तौर से प्रफुल्लित नहीं होता। तो साहिब कहिंदे जे एक होए तो उगवे रुत्ती हूं रुत होए, नानक पाहे बाहरा कोरे रंग ना सोए। कपड़ा कोरा है अगर उसनु पट्ठी ते ना चाड़िए, खुंभ ते ना चाड़िए, ता फिर उस दे ते रंग चाड़ना बड़ा औखा है। जिवें बंजर जमीन दे बीज प्रफुल्लित नहीं आउंदा, तिवें कोरे कपड़े ते रंग भी नहीं चढ़दा। उनु बकायदा भट्ठी दे चाड़ के खुंभ ते चाड़ना बड़ा जो है लाजमी आउंदा है, और फिर बाद विच पाण दे दी है। तो सतगुरु देव जी महाराज कहिंदे नानक पाहे बाहरा कोरे रंग ना सोए। सतगुरु देव जी महाराज फरमान करदे ने पाण तो बिना, खुंभ चाड़े तो बिना कोरे कपड़ियां दे रंग नहीं चढ़ता। तो मन कोरा है, इसनू किसदी पाण चाड़िए ते किवें रंग चढ़ाइए। साहिब कहिंदे ने पै विच खुंभ चढ़ाइए शरम पाओ तन होए। परमात्मा दे भय दी भट्ठी विच इनू पाणा, यही खुंभ ते चाड़ना है। रब दा भय शुद्ध कर देंदा है, रब दा भय निर्मल कर देंदा है, रब दा भय पवित्र कर देंदा है। भय पईए तन खीण होए, लोभ रत विचों जाए, ज्यों बैसंतर धात शुद्ध होए, त्यों हर का भव दुरमत मैल गवाए। तमाम दुरमति प्रभु भय विच जल के खाक हो जांदी है। मनुख दा मन पावन हो जांदा है, पवित्र हो जांदा है। प्रभु भय दे पट्ठी विच इनू पाना चाहिदा है, यही खुंभ ते जो है चाड़ना है। ते जप तप दी जड़ी मेहनत करनी है, यही जो है पाण चाड़नी है। नानक भक्ति जे रबे कूड़े सोए ना कोए। इस तरीके नाल जो भक्ति विच लीन होंदा है, भक्ति करदा है, फिर उसनू कूड़ दी पाण नहीं चढ़दी। वो सच्यार हो जांदा है, सच दा आनंद माणदा है, सच नाल जुड़ के सच दी मूर्ति हो जांदा है। और उसनू वेख के कहना पैंदा है कि हुण ईश्वर विच ते इस भगत विच भेद नहीं रहा। वाह।